हरे राम हरे राम 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 हरे हरे
हरे कृष्ण। स्व अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ इस्कान हरे कृष्ण हरे राम संस्था की ओर से आप सबका स्वागत करते हैं और धन्यवाद करते हैं वरुण और चेतन जी का, जिन्होंने अपने घर में कार्तिक मास में कृष्ण कथा और हरि कीर्तन का आयोजन किया है। अभी आपने सबने भगवान श्री राधा दामोदर को दीप अर्पण किया। ये पूरे कार्तिक मास में ऐसे दुनिया भर में सब मंदिरों के अंदर पूरा महीना ऐसे उत्सव होता है कार्तिक महीने का, दामोदर महीना इसको कहते हैं। क्यों ऐसे करते हैं, क्या जरूरत है करने की, ये प्रश्न पूछ सकते हैं, क्या जरूरत है हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो हम पहले अपने आप को देखें कि हम हैं क्या, व्हाट वी आर। विचार करके देखो कि हम क्या हैं। आपके यहां बहुत कहीं रोड पे जाते हैं तो एक एक एक, एक साइन लिखती है, बी अवेयर ऑफ दी हैवी व्हीकल्स क्रॉसिंग लिखा होता है ना, तो हैवी व्हीकल क्रॉसिंग के सावधान रहना। हैवी व्हीकल में क्या होता है, आगे बड़ा ट्रैक्टर होता है और पीछे बड़ी लंबी ट्राली होती है। आगे ट्रैक्टर पीछे ट्राली, भार सारा ट्राली के ऊपर होता है लेकिन खींचता ट्रैक्टर है। और दोनों को जोड़ने के लिए एक हुक होता है, एक हुक से दोनों आपस में कनेक्टेड है, देखा है ना ऐसे। ठीक ऐसे हम दो चीजें मिली हुई हैं एक हुक के द्वारा, वी आर मेड ऑफ टू थिंग्स इज ए कंपोजाइट, और बीच में एक हुक है जिन्होंने दोनों को आपस में मिला के रखा है। एक तो ट्राली की तरह ये शरीर है जो दिखता है कि सब कुछ कर रहा है, लेकिन इसके आगे जो फोर्स है जो इसको चला रहा है वो स्पिरिट सोल, वो आत्मा है। तो ये दो चीजें आपस में मिल गई है। हुक क्या है दोनों को कनेक्ट करने का, बुद्धि इंटेलिजेंस। बुद्धि या इंटेलिजेंस वो हुक है जिसके द्वारा आत्मा रूपी जो जो शक्ति है जो पावर है वो पूरे शरीर को पुल कर रहा है। तो ये बात आपको समझ में आ रही है कि हम दो चीजों के बने हुए हैं इस दुनिया के अंदर। इस दुनिया का नाम मृत्यु संसार है। जो पूर्वज आपके मॉरिशस में आए थे तीन जनरेशन पहले वो कहां चले गए, चले गए ना। तो यहां इस दुनिया से किसी को जाते हुए तो देखा है ना आप लोगों ने, कोई जाते हुए देखा है कि नहीं देखा है, देखा है ना। तो उसका शरीर यहां होता है क्या, उड़ जाता है, हाँ जी, उसकी बॉडी यहीं पड़ी रहती है ना, हमको उठा के ले जानी पड़ती है ना शमशान में। तो क्या चीज निकल गया है कि उस बॉडी में हमारा रिश्ता कोई नहीं रह गया। हमारा अपना रिलेटिव है, सगा कोई संबंध है, दादा है, नाना है, चाचा है, मामा है, बा कुछ भी है, लेकिन उस शरीर से हम कोई संबंध क्यों नहीं रखते। क्या चीज उसमें नहीं है कि हमारा सब रिश्ता खत्म हो गया, क्या चीज खत्म हो उसमें से निकल गई। व्हाट इज लेस दैट वी हैव नो इंटरेस्ट इन दैट बॉडी एनी मोर, वी वांट टू डिस्पोज एज क्विक एज पॉसिबल। क्या निकल गया, आत्मा निकल गया। ठीक है, और बॉडी नहीं है केवल आत्मा है तो भी भूत भूत करके हम परेशान होते हैं। ये भी दूसरा एस्पेक्ट है, देयर इज नो बॉडी और केवल यहां कुछ बोलना शुरू करे तो भूत आ गया, पता नहीं क्या आ गया। तो एक दूसरा इस संसार में दोनों का साथ होना बहुत जरूरी है। अब हम ये क्यों उत्सव मनाते हैं? कुछ जरूरत इस शरीर की है, इस शरीर की कुछ जरूरतें हैं। भोजन खाना रोज शरीर की जरूरत है ना, मौजे खाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? दो तीन बार खाते हैं दिन में कि नहीं खाते हैं? सोना दो में चाहिए कि नहीं चाहिए? रोज सोना भी है, खाना भी है, कपड़े भी चाहिए, घर भी चाहिए। और प्राय आप देखेंगे तो आप सुबह से शाम तक इस शरीर के जरूरत ही पूरी करने लगे हुए हैं। ये ठीक है गलत है? हाँ, फ्रॉम द मॉर्निंग टिल यू रिटायर यू आर कंप्लीटली बिजी टू सेटिस्फाई द नीड ऑफ द बॉडी, इज राइट। लेकिन हम दो चीजें हैं, एक की नीड सेटिस्फाई करने में पूरा दिन लगाते हैं तो दूसरे की जरूरत कब पूरी करेंगे? जैसे शरीर को भोजन चाहिए, आराम चाहिए, ऐसे आत्मा के लिए भी कुछ भोजन है, कुछ उसके लिए भी एंगेजमेंट चाहिए। ये जो उत्सव है, कीर्तन है, कथा है, ये आत्मा का भोजन है, ये आत्मा की एंगेजमेंट है, ये आत्मा की सेटिस्फेक्शन के लिए है। दुनिया में हो क्या गया है? What happened in the world? People are completely busy for bodily things. They have ignored completely the needs of soul. Therefore, they are unhappy though they have all the facilities. सब सुख हैं फिर भी दुखी हैं। बड़े घर हैं, गाड़ियां हैं, पैसा है, फिर भी दुखी हैं। क्यों? क्योंकि शरीर में सुख नहीं है। सुख का स्रोत, आनंद का स्रोत तो आत्मा है। शरीर तो असत है, दुखमय है। इसलिए हमारे वैदिक संस्कृति में, साहित्य में बैलेंस रखा है। शरीर की जरूरत को पूरा जरूर करो, लेकिन आत्मा के आवश्यकता को मत भूलो। डोंट फॉरगेट द नीड्स ऑफ सोल, अदरवाइज यू विल नेवर बी सेटिस्फाइड इन दिस वर्ल्ड। ये दुख से कहना पड़ता है कि दुनिया में एक भी ऐसी कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं है पूरी दुनिया में जहां साइंस ऑफ सोल सिखाई जाए। आत्मा की शिक्षा देने के लिए कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं है। देखिए, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है दुनिया में। और हम जो हैं, हमारे को उसकी शिक्षा नहीं दी जा रही है। और इसलिए लोग सब फ्रस्ट्रेटेड हैं। अल्टीमेटली बॉडी तो सबकी खत्म हो रही है ना, तो जिस चीज के पीछे हम लगे हुए हैं वो तो रह नहीं रही है। और इसलिए हम बहुत बड़े संसार के अंदर प्रयास करने के बाद भी परेशान हैं। आफ्टर ट्राइंग वेरी हार्ड स्टिल वी आर फ्रस्ट्रेटेड। व्हाई? बिकॉज वी हैव फॉरगॉटन द नीड्स ऑफ दिस सोल। आत्मा की आवश्यकताओं को हमने भुला दिया है। शरीर की जरूरत में इतने फंस गए। बैलेंस करना चाहिए। 24 घंटे सबके पास है ना, 24 आवर्स है, इससे ज्यादा किसी के पास है? हाँ, हमारे पास 24 घंटे हैं कि इससे ज्यादा है? हाँ जी, मॉरिशस में 24 घंटे ही है ना। अभी गर्मी आएगी तो एक घंटा आगे पीछे कर लेते हो आप लोग, एक घंटा आगे पीछे कर लेते हो दुनिया से। एवरीबॉडी हैज 24 आवर्स, राइट? 8 आवर्स फॉर योर बॉडी। 8 घंटे आपको दिए जाते हैं कि सो के आराम करो, नहाओ, खाओ, पियो, शरीर को मेंटेन करो, ठीक है? 8 घंटे आपको दिए जाते हैं कि शरीर को चलाने के लिए कुछ कमाओ। अभी भी गवर्नमेंट में नौकरी 8 घंटे की होती है ना, 8 आवर्स ड्यूटी है ना। 8 आवर आपको दिए जाते हैं कि टू मेंटेन बॉडी एंड बाय प्रोडक्ट ऑफ द बॉडी, परिवार का देखभाल करो, शरीर का देखभाल करो। 8 घंटे आपको दिए। आठ घंटे आपके शरीर के आराम के लिए, शरीर की जरूरत के लिए, 8 hours फॉर योर नीड्स ऑफ द बॉडी, बाकी 8 घंटे कहां जाते हैं आपके? एवरीबडी इज स्लीपिंग विद इन 8 hours, इज इट राइट? कोई बहुत ही आलसी होगा, एक आधा घंटा और सोएगा, और क्या करेगा? बड़ा लालची होगा तो एक आधा घंटा और कमाने का प्रयास करेगा, और क्या करेगा? वेयर इज योर टाइम इज गोइंग? ये 8 घंटे कहां जाते हैं बाकी के? दैट इज फॉर स्पिरिचुअल रियलाइजेशन, वो आत्मा के साधन के लिए है, भगवान को जानने के लिए है। वो कहां जा रहा है सबका समय? ढूंढ लो, ये समय कितना महत्वपूर्ण है। अभी इस वक्त 15 तारीख नवंबर की रात को 7:45 है। जिंदगी में कभी ये 15 तारीख नवंबर 7:45 2010 हमारे नहीं आएगा, इट इज गॉन फॉर एवर। ये हमेशा के लिए चला गया, इसको कोई वापस नहीं ला सकता है। ये आपके हाथ में घड़ी बंधी हुई है ना, ये टाइम नहीं दिखाती है। ये जब इसका जो सुई चलती है ना, वो आवाज एक आता है, सुनता है कभी? कट टिक टिक होता है ना, टिक टिक, मतलब ये सेकंड तुम्हारा चला गया, कट कट कट, लाइफ फिनिश फिनिश फिनिश, जा रहा है। एक एक सेकंड जिंदगी का जा रहा है, कितनी भी कीमत तो वापस नहीं ला सकते। यू कैन नॉट परचेज इस मोमेंट बाय पेइंग होल लाइफ्स एसेट। पूरी जिंदगी का धन देके एक एक सेकंड खरीदा नहीं जा सकता। सिकंदर द ग्रेट, नाम सुना है आपने? अलेक्जेंडर द ग्रेट, हिस्ट्री में ही वॉज द वर्ल्ड कॉन्करर, पूरी दुनिया का विश्व विजेता था। जब भारत में गया था, भारत को विजय करने के लिए, तब वहां बीमार हो गया, मच्छरों ने खाया, मॉस्क्यूटो ने, मलेरिया हुई और मरने को नजदीक पहुंचा। ही वॉज सिक। अब अपने सेनापति को, जनरल को बोलता है, मेरी मां के पास जाने की इच्छा है, ग्रीक जाऊंगा, यूनान मेरे घर, मैं दुनिया पूरी का विजेता हूं, आई एम कॉन्करर ऑफ द वर्ल्ड, मैं आपको आधी दुनिया देता हूं राज, आप मेरे को 1 महीना जिंदगी का दे दो, आई एम रेडी टू एक्सचेंज हाफ ऑफ द वर्ल्ड फॉर 1 month ऑफ लाइफ। और जनरल कहता है इज नॉट पॉसिबल, कैसे दे सकता हूं मैं अपने जीवन का एक महीना? बोला एक दिन दो, मैं चिट्ठी लिखूं मेरी मां को, तेरे को सारा राज देता हूं, पूरी दुनिया देता हूं, आई एम गिविंग यू एक्सचेंजिंग होल वर्ल्ड फॉर 1 day। और जनरल ने कहा इट्स नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है। तब सिकंदर ने कहा था, पूरी जिंदगी लगा के जिस दुनिया को मैंने अपना बनाया, आज वो पूरी दुनिया देने को तैयार हूं, एक जिंदगी का दिन नहीं मिल रहा है। पूरी जिंदगी, पूरा जीवन, पूरी लाइफ जिसमें लगा के मैंने प्राप्त किया, वो सब मैं दांव पे लगा रहा हूं, आई एम एक्सचेंजिंग इट फॉर 1 day, नहीं मिल रहा है। तब सिकंदर ने कहा था कि जब मैं इस दुनिया से जाऊं और मुझे कब्र में डालो, ग्रेव में डालो, तेरे मेरे दोनों हाथों पर हाथ बाहर रखना, ताकि दुनिया देखे कि अलेक्जेंडर वर्ल्ड कांकर खाली हाथ दुनिया से गया। तो कह रहा, बात ये कह रहे थे, 1 minute जिंदगी का बहुत कीमती है, बहुत बहुमूल्य है, इट्स वेरी प्रेशियस है। कहां जा रहे हैं हमारे 8 घंटे, जरा ढूंढो तो। Who is wasting your precious time? कहां जाते हैं 8 घंटे आपके जिंदगी के? आपको शरीर के लिए 8 घंटे दे दिए, कमाने के लिए 8 घंटे दे दिए, बाकी 8 घंटे कहां गए 24 घंटों में से? Where is that time? जो इंटेलिजेंट पर्सन है, जो बुद्धिमान व्यक्ति है, उसको इस टाइम को सदउपयोग करना चाहिए, इसको प्रॉपरली यूटिलाइज करना चाहिए। कहां जा रहा है पहले ढूंढो तो। बुद्धिमान वो है जो इस समय को सदउपयोग कर ले, और ये समय हमारे शास्त्रों ने, वेद ने, ऋषियों ने आत्मा के उद्धार के लिए रखा है। इसमें भगवान के नाम का जप करना है, कथा सुननी है, घर में ठाकुर जी को विराजमान करके मंदिर की पूजा करनी है। ये आत्मा की जरूरत का टाइम है। अब तो आधा घंटा भी घरों में नहीं निकल रहा है इस काम के लिए, तो कहां जा रहा है ये समय? कभी इसको ढूंढा है? आप अपने दिल के दिन का एक दो चार पांच दिन टाइम लिखो कि कहां जा रहा है टाइम आपका। मोस्ट कॉस्टली थिंग इन दुनिया में जिंदगी का सांस है। एक श्वास चला जाता है, वापस नहीं जाता है। एक श्वास, वन ब्रेथ, बहुत कॉस्टली है। श्वास श्वास सिमर गोविंद, हर एक श्वास के साथ भगवान का नाम लेना चाहिए, नहीं तो श्वास बेकार जा रहा है। इस वजह से तो ये जो अभी हम उत्सव मना रहे हैं पूरा महीना, कार्तिक का महीना विशेष रूप से आध्यात्मिक दृष्टि से अपने आत्मा को सरचार्ज करने के लिए, ताकि पूरा साल हम फिर एक्टिव रहे स्पिरिचुअली, और ठीक तरह से इसको उपयोग करना चाहिए। कार्तिक का व्रत रखते हैं लोग, एक टाइम का भोजन करते हैं, नीचे सोते हैं, सारे नियम पालन करते हैं। क्यों? आत्मा की शक्ति के बराबर शरीर की शक्ति नहीं है। जो विल पावर आता है वो आत्मा से आता है, डिटर्मिनेशन आती है वो आत्मा से आती है। इसलिए बहुत जरूरी है कि कुछ समय आपका जो बेकार जा रहा है, कहां जा रहा है इसको ढूंढो। यू गो एंड फाइंड आउट वेयर योर टाइम इज वेस्टेड। कुछ मालूम है कहां जाता है? कोई बता सकता है सबसे ज्यादा हमारा टाइम खराब कहां होता है? बोलो बेटा। सोने के 8 घंटे तो आपको दे दिए, और कितना सोना है? इससे ज्यादा सो नहीं सकते। हाँ हाँ, टेलीविजन हमारा टाइम खराब करती है। बच्चे कितना घंटा टेलीविजन के सामने बैठते हैं रोज? हाँ जी, आपके घरों में बताइए। माता जी आप बताओ, बच्चे कितने घंटे टेलीविजन के सामने बैठते हैं? हाँ, 4-5 घंटे। हाँ, सच है कि झूठ है? पहले टेलीविजन की जगह पे दादा दादी हुआ करते थे, और वो रामायण और भागवत और महाभारत की कहानियां सुनाया करते थे। टेलीविजन जो काम करती है एंटरटेनमेंट का, पहले दादा दादियां घर में हुआ करती थी ये काम करने के लिए, तो बच्चों को बिठा के और पूरी रामायण की कहानियां सुनाया करती थी, ताकि उनका संस्कार अच्छा हो, उनका कैरेक्टर बिल्ड हो, उनको रिश्तों का पता लगे कि भाई का कैसे सम्मान करते हैं, माता का कैसे करते हैं, पिता की आज्ञा पालन कैसे करते हैं, पत्नी पति की सेवा कैसे करती है। ये शिक्षा, ये हमारी टेलीविजन की जगह पे दादा दादी की सेवा हुआ करती थी। अब तो दादा दादी को ही घर से निकाल दिया। जो दादा दादी घर के मालिक, वो घर से बाहर बैठे हुए। ये बहुत बड़ी समस्या, क्योंकि टीवी तो ऐसी शिक्षा देती है कि सबको भगाओ, अकेले बैठो। उसके अंदर तो कथा कोई नहीं होती है, संस्कार कोई नहीं होता है। सुबह सवेरे उठ के लोग पेपर पढ़ते हैं, मॉरिशस में नहीं न्यूज़पेपर आता है? हाँ, पहले लोग उठ के भागवत पढ़ते थे, गीता पढ़ते थे, रामायण पढ़ते थे, अब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। क्यों? कभी सोचा है न्यूज़पेपर लोग क्यों पढ़े? और न्यूज़पेपर में लिखा क्या होता है? क्या होता है न्यूज़पेपर में ज्यादातर लिखा हुआ? यहां एक्सीडेंट हो गया, वहां चोरी हो गई, यहां आग लग गई, यही और कुछ होता है? यही लिखा होता है ना? तो लोग सुबह सवेरे ये क्यों पढ़ते हैं? असल में जब आदमी रात को सोता है ना, सुबह उठता है तो सोचता है कि अच्छा बनना चाहिए, क्या जिंदगी में रखा है, लेकिन जैसे पेपर आता है देखता है अरे इसने भी चोरी की, ये भी बदमाश है, तो फिर मैं कौन सा कम हूं, तो मेरे को चलो यही काम करना चाहिए। आदमी को वो सेटिस्फेक्शन देता है कि मैं अकेला बेईमान नहीं बहुत है। आदमी सुधरना चाहता है सुबह उठ के, लेकिन पेपर उसको कहता मत सुधरो, बहुत तेरों जैसे है, तुम अकेले हो जाओगे, इसलिए यही काम चालू रखो जो पहले से कर। टेलीविजन न्यूज पेपर, न्यूज पेपर की वैल्यू कितनी है, आधे घंटे के बाद पेपर को पीमा पकोड़ा वाला लेके उसके ऊपर डाल के देगा, टाइम खत्म हुआ उसका, हाँ? नहीं। और घर में आपके भगवत गीता है तो तीन जनरेशन तो चल चल सकती है, कम से कम तीन पीढ़ी पढ़ सकती है इसको, हाँ? और इसमें कोई चेंज भी नहीं आएगी। न्यूज का मतलब नई चीज, कुछ नया तो बताना ही है उनको, क्या नया, क्या क्या नया बताएंगे, नाम ही उसका न्यूज, न्यू। हमारा टाइम कहां जाता है इसके ऊपर, इफ यू आर इंटेलिजेंट देन फाइंड आउट हु इज एक्चुअली रॉबिंग यूअर प्रेशियस टाइम, कौन आपके टाइम को चोरी कर रहा है, दैट इज फॉर यू एंड हु आर यू। मैंने कहा आप क्या हैं, आप आत्मा हैं, शरीर नहीं है, और आत्मा की आवश्यकता बैठ के कथा सुनना है और कीर्तन करना है, ये आत्मा की आवश्यकता है। ये नीड है उसकी, भगवान को जरूरत नहीं है आपकी पूजा की, भगवान परिपूर्ण है, यू डोंट नीड इट। भगवान क्या, आप क्या दे सकते हो भगवान को, लेकिन आपकी प्यूरिफिकेशन के लिए जरूरी है, हमारी प्यूरिफिकेशन के लिए जरूरी है। भगवान को कुछ देने से कुछ मांगता नहीं है, भगवान को कुछ नहीं चाहिए, क्या मांगा तो क्या मांगा, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, एक पत्ता तुलसी का दे दो मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। थोड़े दिन पहले, एक हफ्ता पहले गिरिराज पूजा हुई, गिरिराज पर्वत के सामने नहीं तो टनों के हिसाब से प्रसाद रखा, और सब प्रसाद गिरिराज प्रकट होकर खा लिया, और फिर कहा और लाओ और लाओ और लाओ, तो जितना था सब तो दे दिया, आप कहां से लाए। एक ब्राह्मण ने एक तुलसी का पत्ता दिया, बोला संतुष्ट बस हो गया, एक तुलसी के पत्ते से भगवान संतुष्ट हो गया। तो क्या एक तुलसी का पत्ता भगवान को अर्पण करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है क्या, फलम, फल एक छोटा सा कोई फल भगवान को अर्पण करना है रोज। अश्नामी, भगवान कहता मैं खाता हूं, अश्नामी का मतलब खाना, मैं खाता हूं। तो भगवान से संबंध स्थापित नहीं करेंगे इस दुनिया में, आप सब कार्य क्या कर रहे हो सब आपको मालूम है, आप सब दुनिया में संबंध स्थापित, यू आर ट्राइंग टू डेवलप रिलेशन, सही है कि नहीं है। आपका जितना काम चल रहा है ना वो सिर्फ रिलेशन डेवलप करने में चला हुआ, लगा हुआ है, हाँ भाई, पहले तो परिवार के रिलेशन, फिर थोड़े आगे, फिर सरकार के साथ, फिर किसी बड़े आदमी के साथ, एवरीबडी इज ट्राइंग टू मेक सम रिलेशंस, ये हमारी जरूरत है, लेकिन ये सब रिलेशन सदा के लिए रहने वाले नहीं है। रिलेशन भगवान के साथ जोड़ना, आत्मा का रिलेशन भगवान से जोड़ना है, शरीर का रिलेशन संसार से जोड़ना है, तो शरीर के रिलेशन के लिए तो बहुत प्रयास करते हो, कभी आत्मा का रिलेशन भगवान से जोड़ने, जिसका आत्मा है किसका, शरीर किसने दिया, मां ने, शरीर पैदा मां, मां के गर्भ से 9 महीना मां बनाती है शरीर को, लेकिन बीज प्रदा पिता है, सीड गिविंग फादर है, शरीर पूरा मां बनाती है, ऐसे प्रकृति ने शरीर बनाया है, लेकिन श्री कृष्ण कहते अहम बीज, बीज प्रदा पिता, मैं बीज प्रदान करने वाला पिता हूं, भगवद गीता में कहते हैं मैं बीज का प्रदान करने वाला पिता हूं, आई एम सीड गिविंग फादर। तो शरीर तो प्रकृति की तरफ जाएगा, क्योंकि प्रकृति ने दिया है, बना हुआ प्रकृति का है, इज मेड ऑफ मैटर, 24 तत्वों से बना हुआ, प्रकृति से बना हुआ, तो प्रकृति की तरफ जाएगा और आत्मा भगवान की तरफ जाएगी क्योंकि भगवान का है। ममाईवांश जीव लोके जीव भूत सनातन, भगवान भगवत गीता में कहते हैं जीव मेरा अंश है, मैं बीज देने वाला पिता हूं। आम सर्व योनेशु कौनते हैं, आम बीज प्रदा पिता। जो भी आपको रूप दिख रहे हैं, मूर्तियां दिख रहे हैं, शक्ल दिख रहे हैं, इसके अंदर जो बीज देने वाला पिता हूं मैं हूं, भगवान कह रहे हैं। तो आत्मा भगवान का अंश है, वो भगवान की तरफ जाना चाहता है। शरीर प्रकृति ने दिया है, प्रकृति की तरफ जाना चाहता है। ममाईवांश जीव लोके, जितने जीव संसार में सारे मेरे अंश हैं, मेरे संतान हैं। जीव भूत सनातन, जीव को भूत लगा हुआ है। आपको भूत भूत समझते हैं? हाँ, वर्ष में भूत लगते हैं, किसी को भूत लगता है या नहीं? ओझा तो बहुत है यहाँ, हाँ भूत होते हैं ना, कहते हैं किसी को भूत होता है यहाँ? भूत बोलते किसको बोलते हैं? भूत आदमी को भूत लगता है तो क्या करता है? भूतने भी है क्या? केवल भूत है या भूतने भी है? हाँ भूत भूतने समझते हैं आप लोग? ये नौजवान है, इसको भूतनी अगर लग जाए तो ये बोलेगा लड़की की आवाज में, ये लड़की की आवाज में बोलेगा क्योंकि इसके अंदर लड़की का आत्मा घुस जाएगी, ठीक है ना। और किसी स्त्री को कोई पुरुष भूत लगा हो तो वो आदमी की तरह बोलेगा। हाँ इसको भूत बोलते हैं ना, इसका अर्थ क्या हुआ? भूत का मतलब जो स्वयं अपनी पहचान भूल जाता है, भूत की पहचान में बात करता है, उसी को भूत कहते हैं ना। अपनी आइडेंटिटी भूल जाता है, भूत की आइडेंटिटी में बोलता है। ये हमारे को भी ये शरीर रूपी भूत लगा है, हम अपनी आइडेंटिटी भूल गए हैं कि हम आत्मा है, हम शरीर की आइडेंटिटी से पूरी दुनिया में काम कर रहे हैं। हमको भूत लगा हुआ है, असल में ये हमारी समस्या है, हमको भूत लगा हुआ है। इसलिए रोज भगवान का नाम लेना है भूत उतारने को। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम बोलिए, राम राम हरे हरे, ये रोज बोलना पड़ेगा तब भूत उतरेगा। ये भूत भूत तो ओझा मंत्र ही तो पड़ता है ना भूत उतारने के लिए, तो ये बहुत जरूरी है रोज। जीव भूत सनातन, जीव भी सनातन है और भूत भी सनातन है। कहां से भूत आया? मनशिष्टानि इंद्रियाणि, ये भूत मन और पांच इंद्रियां मिलके हैं। आपने मन का भूत एक ड्रामा देखा है कभी? मन का भूत यंग भक्त करते हैं मन के भूत का ड्रामा। मन सबसे बड़ा भूत है आदमी को, हरे कृष्णा बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। एक सेठ था, एक साधु के पास सत्संग में आता था, तो रोज आता था। फिर जब उसका कारोबार बढ़ गया, बिजनेस बढ़ गया, बहुत जगहों पे उसके ब्रांचेस खुल गई बहुत कंट्रीज में, तो सत्संग में नहीं आ रहा था। तो एक दिन आया अचानक, तो संत ने बोला तुम सत्संग में नहीं आते हो, आत्मा का ध्यान छोड़ दिया, संसार में फंस गए। बोला महाराज आपकी कृपा से कारोबार बढ़ गया है, बिजनेस एक्सपेंड हो गया है, अब टाइम नहीं मिलता है, कुछ करो, आप कोई साधन बताइए। संत ने कहा हाँ साधन कौन सी मुश्किल है, मैं बताता हूं आपको। संत ने एक जिन पैदा करके दे दिया उसको। जिन समझते हैं? भूत का बाप। जिन जरा भूत से भारी होता है, जाइंट। बोला इसको ले जाओ, तुम्हारा जो काम हो इसको बताना, ये काम कर लेगा, लेकिन एक शर्त के ऊपर, इसको कभी भी फ्री मत छोड़ना, ये हर वक्त एंगेज रहना चाहिए, अगर एंगेज नहीं रखोगे तो ये आपको खाएगा। He will eat you up if you don't keep him engaged. Yes, said Bola Maharaj, puri duniya mein kotiyan hai. Over 100 people mere paas kaam karte hain, ye kya? Bas ba, ye kaam mein lag gaya to main aapke satsang mein aa jaunga. Ghar le gaya jinko, subah utha, kaha falani hamare jo shipment aayi hai uska pata karke aao. Abhi Seth ji toothbrush uthaya tab tak wapas aaya, shipment ke ye kagaz, ye shipment ho gaya. Acha office mein jaake ye kaam karke aao. Abhi Seth sahab haath dho raha hai tab tak wapas aaya, office ka kaam ho gaya. Breakfast tak saare din ke kaam pure ho gaye. Ab bolta hai kaam batao, nahi to khaunga. अब मैं खाऊंगा तुम्हारे को, काम बताओ. अब काम तो पूरे हो गए, क्या करें? भागता हुआ गया. महाराज ये कहा हमारे पीछे भूत लगा दिया है. काम सुबह 2 घंटे में सब आधे के 1.5 घंटे में पूरा हो गया. अब बोलता है खाऊंगा, अब क्या करूं? महाराज ने कहा ऐसे करो, इसको एक माला दे दो और उसको बोलो यहां से शुरू करो. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे. जब यहां पहुंचे ना तो थोड़े से ऊपर मत जाना, यहां से फिर वापस शुरू करना. बस इधर से जाओ उधर से जाओ, चलते रहो. जब काम हो तब बुलाया करो, नहीं तो बोलो इसको यही काम करो. कुछ लोग इसको दूसरी तरह से बताते हैं, कहते हैं संत ने कहा ऐसे करो, तुम्हारे घर के बाहर एक बहुत बड़ा बांबू का बड़ा खंभा लगा दो. जब काम नहीं हो तो उसको बोले इसके ऊपर चढ़ो उतरो चढ़ो उतरो चढ़ो उतरो, तो वो बिजी रहेगा, नहीं तो आपको खाएगा. बोला महाराज ये है क्या? बोला ये कुछ नहीं है, तेरा मन है. इसको बिजी नहीं रखोगे तो तुम्हारे को परेशान करेगा, तेरे को खाएगा. तेरे को खाएगा मतलब तेरे समय को खा जाएगा बेकार में इधर उधर की बातों में. इसको क्या करो, इसको बिजी रखो. ऊपर नीचे सांस जाता है ना, ये खंभा है, ये खंभा है ऊपर नीचे सांस. इस सांस के साथ मन को भगवान के नाम जपने में लगाओ अथवा माला के ऊपर आगे से पीछे चलते रहो. काम खत्म होगा ही नहीं तो मन बिजी रहेगा. ये जिन मन है ये समझ लो, भगवत गीता के 6 अध्याय में ये है कि मन ही तुम्हारा शत्रु है, मन ही तुम्हारा मित्र है. अगर मन को जीत लिया तो मन तुम्हारा मित्र है, नहीं तो मन तुम्हारा शत्रु है. और मन कितना शक्तिशाली है, मन के ऊपर कभी विश्वास नहीं करना. आपके यहां बहुत पीपल है, पीपल का पत्ता होता है ना, हवा हो ना हो तभी ऐसे हिलता रहता है, मालूम है? पीपल का पत्ता हवा हो ना हो तभी हिलेगा. और यहां हाथी भी नहीं है, हाथी हमेशा कान को ऐसे करता रहेगा. हाथी का कान एक जगह खड़ा नहीं होता है, मालूम है? हाँ, हाथी का कान, पीपल का पान और आदमी का मन कभी एक जगह नहीं रहते, ऐसे करते रहते हैं हमेशा. ये तीन जगह, तीन चीजें कभी स्टिल नहीं रह सकती. आप कभी पीपल के पत्ते को खड़े होकर देखना, हवा हो ना हो ऐसे करता रहेगा. और हाथी कभी मिले देखना, कान ऐसे करेगा, कान कभी उसका बंद नहीं होता. और आदमी का मन भी ऐसे ऊपर नीचे कूदता रहता, कभी शांत नहीं होता. तो मन जिन है, और मन को जीते जग जीता. जो मन को जीत लेता है वो संसार में विजयी होता है. और मन किससे जीता जाएगा? बुद्धि से. बुद्धि मन से ज्यादा ऊपर है, बुद्धि ज्यादा ऊपर है मन से, इंटेलिजेंस से. मन का काम क्या है? संकल्प विकल्प, ये करो ये नहीं करो. मन यही काम करता है सिर्फ, ये करो ये नहीं करो, ये करो ये नहीं करो, ये करना चाहिए इससे ये लाभ है, ये लाभ नहीं है ये नुकसान है. उसको अपना कोई डिटर्मिनेशन नहीं है मन का. आपको बताऊं मन का कैसे काम करता है. आप बाजार जाते हैं ना कभी कोई कपड़ा लेने, हाँ जाते हैं ना मार्केट में. अगर आप मन के स्तर पे देखोगे तो ये इसका रंग अच्छा है, इसका टेक्सचर अच्छा है, ये ठीक है वो ठीक नहीं है, दुकानदार समझ जाएगा कि ये मन के स्तर पे है. तो आपको 25-50 चीजें ऐसे घुमा के. और अगर आप इंटेलिजेंट के स्तर पे हो तो जाके बोलेगा ब्लू कलर का ये कपड़ा इतना दे दो, उससे ज्यादा देखने की जरूरत नहीं. तो जो इंटेलिजेंट डिटर्मिनेशन से बोलेगा यही चाहिए, और दुकानदार देख समझ जाएगा कि इसको पता भी है क्या लेना है इसके इज स्पीकिंग इंटेलिजेंटली, और दूसरा ये तो मन के स्तर के ऊपर है, इसको घुमा लो इधर से उधर से घुमा लो, और वो घुमाता रहेगा पूरा दुकान दिखा के ऐसा घुमाएगा कि जेब में जो कुछ है सब निकालना पड़ेगा। तो मन को कंट्रोल बुद्धि से किया जाता है, लेकिन बुद्धि को सत्ता कहां से मिलेगी, बुद्धि को कहां से शक्ति मिलेगी, सोल से। इंटेलिजेंस इज नेक्स्ट डोर नेबर ऑफ द सोल, आत्मा का निकट का पड़ोसी है बुद्धि। इसलिए जो आत्मा का साधन करता है वो अपनी बुद्धि को बहुत उस बुद्धि को बोलते हैं स्थित प्रज्ञ, उसकी बुद्धि स्थित होती है, स्थित प्रज्ञ उसकी बुद्धि बहुत स्थित होती है। जो आध्यात्मिक साधन करता है उसकी बुद्धि डिटर्मिनेशन बहुत अच्छी होती है, वो मन के स्तर के ऊपर नहीं होता है। लेकिन प्रभुपाद जी ने जब हरे कृष्ण मंत्र के ऊपर बोलना शुरू किया तब कहा न ये इंद्रियों के स्तर के ऊपर है, न मन के स्तर के ऊपर है, न बुद्धि के स्तर के ऊपर है, ये तो ट्रांसेंडेंटल प्लेटफॉर्म पे बियॉन्ड सेंसेस माइंड एंड इंटेलिजेंस। ये भगवान का नाम आप जो ले रहे हैं ये आत्मा के स्तर का है, आप इसका अनुभव अभी इधर इसी वक्त कर सकते हैं। आपने जब भगवान का नाम हमारे साथ लिया आपको शांति का अनुभव हुआ कि नहीं हुआ, एक मिनट के अंदर यहां इस वक्त होता है, करके देखिए आंखें बंद करके हमारे पीछे बोलिए जरा एक बार फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरे कृष्ण। तो कोई बताओ कैसे लगा आपको एक मिनट के अंदर, एक मिनट भी नहीं हुआ 20-25 सेकंड हुआ, आपको कैसे लगा कोई बताएगा कैसे लगा, हाउ यू फेल्ट, हाँ कोई शेयर करेगा कैसे लगा, बोलिए बेटा कोई बोलो, आप बोलिए हाउ यू फेल्ट, यस फ्रेंड बोलो, जस्ट पीस, इसका मतलब पीस, कोई शोर नहीं कोई और नहीं है, मीन्स यू वर अलोन सो यू फेल्ट साइड ऑफ पीस, वेरी गुड। और कोई आप में से बोले कैसे लगा आपको, आपको कैसे लगा बेटा, हाउ यू फेल्ट, शांति सुख। तो हम सुबह से शाम तक शांति और सुख ही तो ढूंढ रहे हैं और क्या कर रहे हैं, और यहाँ एक सेकंड में मिल सकता है तो परेशान काय के लिए होने का, आखिर दुनिया में हम इसी को ढूंढ रहे हैं ना, और ये तो एक सेकंड में यही एक्सपेरिमेंटली आप देख सकते हो। जब ये इतना मिल सकता है, जब आप प्रेम से इसको जपोगे, अभी तो मैकेनिकली एक प्रयास कर रहे हो, लेकिन जब प्रेम से जपोगे देन यू विल हैव ए डिफरेंट पैराडाइम, अब दूसरी दुनिया में हो जाओगे। दुनिया रहेगी, दुख रहेगा, लेकिन आपको पता नहीं लगेगा। इस बच्चा जो खेल रहा है ना, इसको कोई चिंता है, कोई चिंता नहीं है ना इसको, रात है कि दिन है, कि गाड़ी आएगी कि नहीं आएगी, कि भोजन आता है घर में कि नहीं है, कि सब्जी है कि नहीं है, इसको चिंता है नहीं है ना, किसको चिंता है, माता पिता को है ना। ऐसे ही भगवान के भक्त को कुछ दुनिया की चिंता नहीं, उसकी चिंता भगवान करता है, क्योंकि वो भगवान का चिंतन करता है। जो भगवान को याद करता है उसकी भगवान देखभाल करता है, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं पढ़ रहा था इस्कॉन के चार सन्यासी, पहले सन्यासी जो थे, एक पहला 67 में सन्यासी वृंदावन में बना था और चार उसके बाद प्रभुपाद ने 70 में सन्यास दिया। एक यूनिवर्सिटी के बाहर खड़े थे, एक आदमी उनसे मिल रहा बात कर रहा था, एक सन्यासी को बूट चप्पल बप्पल कुछ नहीं था। उसने बोला व्हाई नो शूज इन अमेरिका? उसने बोला कृष्णा विल प्रोवाइड। उसने बोला भगवान क्या तुम्हारे जूते भी देगा तुमको? अरे ही वाज सरप्राइज्ड कि ये कैसे बोल रहा है ऐसे। वो बोलता है मैं उसके सामने खड़ा हूं, मेरे देखते देखते, वो उस वक्त में अपनी पत्नी के साथ वहां आया था, इंद्रद्युम्न स्वामी इसका आज नाम है, बहुत बड़ा इस्कान में स्वामी है आज। उस वक्त में वो 18-19 साल का शादी किया हुआ स्त्री के साथ खड़ा था। उसने बोला ये महाराज कह रहा है कि मेरे जूते कृष्ण देगा। ये बात कर रहा था, इतनी देर में कोई हिप्पी एक जूते का 10th शूज लेके आया अपने आप पता नहीं कहां से। उसने बोला ये 9 नंबर, आई एम नॉट यूजिंग 9, 9 नंबर मैं नहीं पहनता हूं, आई यूज 10, एनीबडी नीड्स दिस? और वो स्वामी बोलते आई यूज 9, प्लीज गिव मी। बोलते ये अभी इसने कहा कृष्ण शूज देगा और अभी इसको शूज यहां से कोई लाके देखे गया? जब यहां का प्रैक्टिकल दुनिया का एग्जाम्पल है अभी का। और उन सन्यासियों ने 24 घंटे तक कुछ खाया नहीं था, भूखे थे। तब उसने कहा आप मेरे हमारे घर चलो। तो उन्होंने बोला तुम्हारे पास कुछ पैसा है? हमने कुछ खाया नहीं है। यू हैव सम मनी? बोला अभी पेचक मेरे को पेचेक मिला है। तो जाके वो सुपरमार्केट में गए, ट्रालियां उठाई, सब फ्रेश फ्रूट लाए, फ्रूट सब्जी लाए, खुद अपने हाथ से बनाया और प्रेम से खुद भगवान को भोग लगाया और आनंद से बैठ के खाया। वो बोला ऐसा तो मैंने कभी टेस्ट नहीं किया था, हम खाते तो हमेशा थे लेकिन वो प्रसाद इतना आनंद था। 3 दिन हमारे पास रहे और हम उनसे इतने अटैच हो गए कि वाकई उनका भगवान कैसे देखभाल कर रहा है। कोई पैसा नहीं था, कुछ नहीं था, सब कुछ अपने आप उनका व्यवस्था हो रही, सब कुछ व्यवस्था अपने आप हो रही है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ये चिंता हमारी हम खुद खड़ी कर देते हैं क्योंकि भगवान का चिंतन नहीं करते हैं। तो भागवत को सुनने का अर्थ यह है कि आपका मन भगवान की लीलाओं में रम जाएगा। जब भगवान की लीलाओं में या कर रहे थे दामोदर अष्टक, जब इसका अर्थ ठीक तरह समझेंगे जब आरती करते हुए, तो उसके अंदर जो भाव है पूरा भागवत का वो समझ में आएगा, तो मन उसी में लगा रहेगा। क्या चाहिए मुझको? वो क्या कह रहा है सत्यव्रत मुनि? मोक्ष नहीं चाहिए, वैकुंठ नहीं चाहिए, दुनिया नहीं चाहिए, क्या चाहिए? इदम देन वपुनाथ गोपाल बालम। ये गोपाल आपका जो सुंदर रूप है ना, ये मेरे मन में आविरस्ताम, इसका अवतार मेरे मन में हो, आविर्भाव हो इसका मेरे मन में, ये मेरे मन में प्रकट हो जाए। तो अभी तुम्हारे मन में क्या है? अभी आप लोगों के मन में क्या है? जरा अंदर जाके देखो तो, अपने घर के अंदर अंदर जाओ देखो क्या है। टेबल लगी हुई है, उसके ऊपर प्रसाद लगा हुआ है, मन में दिखेगा और थोड़ा देखोगे तो जो अपना बच्चा कहीं को दिखेगा, किसी को पत्नी दिखेगी, किसी को भाई दिखेगा, किसी को दुकान दिखेगा, किसी को पैसा दिखेगा। ये अंदर में बहुत सारी मूर्तियां बनी हुई हैं, देखा है मन में कितने मन के अंदर शेप बनी हुई है मालूम है? हाउ मेनी डिफरेंट शेप वी हैव इन दी माइंड। इस कचरे के बीच में भगवान आगे खड़ा नहीं होगा, इसलिए जब भगवान की कथा सुनेंगे तो मन ऐसा भगवान में लग जाएगा, ये सारे मूर्तियां अपने आप पिघल जाएंगी, ये द्रवित हो जाएंगी, ये डिजॉल्व हो जाएंगी, तब भगवान की मूर्ति अंदर बनेगी। और जब वो मूर्ति बन गई तो सारी मूर्तियां अच्छी लगने लगेगी, नहीं तो अभी एक अच्छा लगता है एक बुरा लगता है, ये मेरा है वो तेरा है, ऐसे हम दुनिया में मेरा तेरा कर रहे हैं। और भगवद गीता शुरू यहां से होती है, माम का पांडवा शैव किमुकुरत, मेरे और पंडू के बच्चों ने क्या किया? झगड़ा शुरू हो गया कि नहीं हो गया? अरे तुम्हारे दोनों है, पांडु तुम्हारा भाई है, तुम बड़े हो, पांडु रहा नहीं, तो ये क्यों नहीं कहते कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं? मेरे और तुम्हारे बच्चे झगड़ा हो गया ना शुरू, तो यही तो माँ बाप झगड़ा है, मेरा और तेरा करना ही तो झगड़ा है। वैसे मेरा है क्या इस दुनिया में? मेरा क्या है? आप लोग जरा बताइए क्या है आपका? जिसको आप मान के बैठे हो अपना, उसमें वो आपको जानता है? कभी पता किया इसका? आप घर को अपना मानते हो ना, घर बेच के किसी दूसरे को तो रोता है घर के कहां छोड़ के जा रहे हो, मुझे बोलता है कभी रोता है क्या घर? हाँ जमीन रोती है। आपका 500 रुपये का नोट गिर जाए और उसके ऊपर कुत्ता पांव दे दे तो नोट कहेगा नहीं नहीं भैया का है, तुम कुत्ता पांव मत दो, बोलेगा मेरा 500 का नोट, तुम कह दो वो तेरे को जानता है? नहीं जानता है ना। जिन चीजों को अपना मान के बैठे हो तुम्हें पहचानते भी नहीं है, वो आपको जानते भी नहीं है कि आप कौन हो, ये सच है कि झूठ है? और जो आपका अपना भगवान आपकी दिल में बैठा है उसको भूल के बैठे, जो अपना है, अपना कौन है? अपना तो वो है भगवान जो हृदय में बैठा हुआ है, जिसने कभी हमारा साथ नहीं छोड़ा है। जो अपना है उसको याद करो, जो अपना नहीं है उसको भुलाना चाहिए। हमने जो अपना नहीं है उसको याद करके बैठे हुए हैं दुनिया में, जो हमारा नहीं है उसको पकड़ के बैठे हुए हैं। ये मॉरिशस में 3 जनरेशन पहले आप नहीं थे, ये आपका नहीं था ना, किसी और का था ना, आज आप बोलते हैं हमारा है। एक मस्त साधु था ऐसे अवधूत, जा रहा था नींद आ रही थी, ओ प्राइम मिनिस्टर हाउस माना राजा का महल था, उसमें जाके सो गया। पुलिस वालों ने उठाया, क्या कर रहे हो यहां, कहां सोयो, ये कोई गेस्ट हाउस है, धर्मशाला है क्या, हैं सोने दो, नींद क्यों खराब कर रहे हो, बुलाइए, राजा का महल है यहां सोना नहीं है। बोला राजा कहां है, जरा बात कराओ। राजा को पूछता है ये किसका महल है? बोला मेरा महल है। बोला आपका नहीं था तब आपसे पहले किसका था? बोला मेरे पिताजी का था। बोला आप नहीं रहेंगे तो किसका होगा? बोला मेरा बेटा होगा। बोला इसी को तो धर्मशाला बोलते हैं जो किसी का नहीं है, पहले कोई की और का था, अभी तुम्हारा है, फिर किसी और का हो जाएगा, तो मेरे को सोने दो, डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो, तुम्हारा नहीं है ना, तुम्हारा सबके ऊपर चलता है काम, हाँ तुम्हारा हुक्म सबके ऊपर चलता है, बोल रहा है। बोला हाँ सब मानते हैं। बोला इस मच्छर मुझे परेशान करते, इसको बोलते इसको बोलो तुम कि यहां मुझे नहीं खाए, तुम्हारा मच्छर के ऊपर तो चलता नहीं है और मेरे को तुम कहते हो यहां सोने नहीं दो, सच झूठ बोल रहा, सच बोल रहा झूठ बोल रहा था। कभी कभी लोग कहते हैं ये आसन, ये प्राइम मिनिस्टर का सीट है कि ये महात्मा का सीट है, इसके ऊपर मत बैठो। अरे आदमी नहीं बैठे और उसके ऊपर मक्खी बैठी होती है, उसको कोई मना नहीं करता है, मक्खी को कोई रोक सकता है क्या, मच्छर को रोक सकता है? हाँ आदमी नहीं बैठ सकता, आदमी से क्या वो ज्यादा महत्वपूर्ण है क्या, उसको बैठने दो। तो ये ठीक तरह समझना चाहिए हमको कि हमारी आत्मा की आवश्यकताएं क्या है, उसको नहीं भुलाना चाहिए, नहीं तो संसार के अंदर शरीर ही समाप्त हो जाएगा, तो शरीर की सारी चीजें तो यही रह जाएंगे, शरीर के संबंध ही यहां रह जाएंगे। हम आत्मा है, हम भगवान श्री कृष्ण के संतान है, तो हमको भगवान श्री कृष्ण को याद करना चाहिए। ये कार्तिक महीने में इसलिए भागवत कथा रोज प्रतिदिन सुननी चाहिए, 1-2 घंटे बैठकर। और ऐसा हमारी सनातन संस्कृति ने ऐसा नियम बनाया, अभी कार्तिक जाएगा, थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो फिर आ जाएगा रामनवमी का उत्सव आएगा, फिर सब 9 दिन राम कथा चलती रहेगी, थोड़ा आगे जाएंगे फिर जन्माष्टमी का उत्सव आ जाएगा, गौर पूर्णिमा आएगा। तो ये हमारे लिए हर साल में ऐसे उत्सव है आध्यात्मिक यादगिरी दिलाने के लिए। लेकिन फिर आजकल हम इन उत्सवों को, जितने भी अब फेस्टिवल आते हैं ना, इसको हमने पिकनिक में पर कन्वर्ट कर दिया, इसमें आध्यात्मिकता खत्म हो गई, आध्यात्मिकता बिल्कुल खत्म हो गई। नए कपड़े पहन के सज धज के मंदिर में जाना है, कुछ 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 ले जाना है, कुछ देना है, कुछ लोगों से मिलना है, लेकिन किस काम के लिए जाते हैं वो काम ही भूल गया, क्यों जाते हैं वो बात ही खत्म हो गई। जस्ट इट बिकम ए फेस्टिवल, बहुत पैसा भी लगता है, बहुत खर्चा भी होता है, लेकिन एंड रिजल्ट नहीं, क्योंकि कुछ नहीं करते। और ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं, भगवान को एक टोकरी फल देके और एक इतनी बड़ी लिस्ट काम की देके आते हैं कि हमारे दुकान को ठीक करना, बेटे को मेडिकल में सिलेक्ट करना, बेटी की शादी कराना, आधा किलो फ्रूट के ऊपर इतना सारा भगवान के ऊपर काम का लिस्ट देके, इसको बोलते हैं कुत्ता देके हाथी मांगना। इसलिए इतने सारे मंदिर हैं, मैं यहां देखता हूं हर गांव में 2-3 शिवालय हैं, इतने सारे मंदिर हैं, लेकिन उन मंदिरों से ज्यादा शराब खाने हैं मैंने देखे मॉरिशस में, उन मंदिरों से ज्यादा शराब खाने। मैं झूठ बोल रहा हूं सच बोल रहा हूं? मंदिर दो है तो इसका मतलब मंदिर अपना काम नहीं कर रहे हैं ना। मंदिर काम करते होते तो ये चीज कम होनी चाहिए थी ना। इसका मतलब मंदिर अपना काम नहीं कर रहे। जो शिक्षा मंदिर से मिलनी चाहिए वो नहीं ठीक मिल रही है। तभी तो आदमी हर बुराइयां चारों ओर दिख रही है, आम जाम सारे आम दिख रही है। इसका मतलब मंदिर अपना काम नहीं ठीक कर रहे। अगर आदमी अस्पताल इतने सारे हो रहे हैं लेकिन आदमी फिर भी बीमार हो रहे, क्योंकि ठीक तरह चिकित्सा नहीं हो तो आदमी बीमार होगा। इसलिए बुद्धिमानी अगर भगवान आपको इंटेलिजेंस दिया है मानव को, तो उसको 8 घंटे जो आपके हैं उसमें से कुछ समय रोज आत्मा के साधन के लिए, भगवान नाम जपने के लिए निकालना चाहिए। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा, एनी क्वेश्चन और कमेंट? तो चेतन जी का धन्यवाद करते हैं, वरुणा और सारे परिवार का। आप किसी भी हालत में कुछ समय आत्मा के लिए निकालो, आत्मा ही आपकी पहचान है। शरीर के पीछे सारा समय लगाना बुद्धिमानी नहीं है, इट्स नॉट इंटेलिजेंट डिसीजन, ये बुद्धिमानी नहीं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।